रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के केंद्रीय सदस्य के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक। 6 पदाधिकारियों के लिए आज रात होगी मतदान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक का किया गया प्रमाणीकरण। और वेनेजुएला में आए 2 बड़े और शक्तिशाली भूकंपों में कम 164 लोगों की मृत्यु तथा भवनों सहित अनेक संरचनाओं को पहुंची भारी क्षति। अब समाचार विस्तार से। चितवन के भरतपुर में जारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के प्रथम महाधिवेशन अंतर्गत केंद्रीय सदस्य पद के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक हुआ है। 99 केंद्रीय सदस्य पद के लिए आज हुए मतदान का मत परिणाम सार्वजनिक हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के प्रथम महाधिवेशन के अंतर्गत दूसरे चरण के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि पार्टी के पदाधिकारियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली शाम को प्रकाशित की गई। इसी प्रकार शाम के 7:30 बजे से 8 बजे तक उम्मीदवारों के विरूद्ध दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई। रात 8:15 तक अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच की गई, जबकि उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा रात 8:30 बजे तक निर्धारित की गई थी। पदाधिकारियों पदों के उम्मीदवारों की अंतिम नामावली रात 8:45 पर प्रकाशित की गई और आज रात को ही पदाधिकारियों के लिए मतदान होगी। इसी तरह मतगणना रात 12:15 से 1:15 तक की जाएगी और रात 1:30 पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन के माध्यम से उपसभापति, महिला उपसभापति, महामंत्री, 2 खुला सह महामंत्री तथा 1 महिला सह महामंत्री का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपा के नेता मनीष झा के अनुसार 6 पदाधिकारियों के लिए मतदान करने में प्रत्येक प्रतिनिधि को लगभग 4-5 मिनट का समय लगने का अनुमान है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण किया है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रतिनिधि सभा की बैठक से पारित होकर प्रमाणीकरण के लिए पेश होने के लिए आए उक्त विधेयक नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रमाणीकरण किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि यदि जनसंचार माध्यम जनता का विश्वास खो देते हैं तो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज चितवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने संचार कर्मियों से अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की गंभीर समीक्षा करते हुए आत्ममूल्यांकन करने का आग्रह किया। मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि वे सभी सरकार वालों के साथ संवाद कर आवश्यक नीतियों, नियमों और कानूनों में संशोधन के माध्यम से संचार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। एक अन्य प्रसंग में मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि वर्तमान सरकार देश और जनता को केंद्र में रखकर ऐसे कार्यों में सक्रिय है जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नागरिक कर सकें। आज ही पार्टी के जारी महाधिवेशन स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि महाधिवेशन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा को और अधिक सशक्त, जिम्मेदार और एकीकृत बनाएगा। राजनीतिक दलों के जीवन में महाधिवेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री तिमल सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि महाधिवेशन द्वारा चुना जाने वाला नेतृत्व देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रपा को आम नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव से नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अर्बम ने शिष्टाचार भेंट की। लैंचौर स्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्ष मनाया जाने वाला नेपाल नेपाल अमेरिका कूटनीतिक संबंध स्थापना का 80वां वर्षगांठ समारोह दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन मित्रता और साझेदारी का प्रतीक बनने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भेंट के दौरान कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अर्बम ने कहा कि नेपाल और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक भी है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका इन संबंधों को और अधिक ऊंचाई तथा मजबूती प्रदान करने के लिए इच्छुक है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वर्तमान में उसके पास लगभग 10,000 वायल एंटीरेबीज टीके का भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय, प्रांतीय तथा जिला स्तरीय अस्पतालों के भंडार में फिलहाल 10,011 वायल एंटीरेबीज टीके उपलब्ध है। उनके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 2,500 वायल एंटीरेबीज टीके प्राप्त हो चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 4,500 वायल टीके आगामी कुछ दिनों के भीतर प्राप्त होने की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने स्थानीय निकायों से कुत्तों तथा अन्य जानवरों के काटने की घटनाओं के प्रबंधन और आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुगम बनाने का अनुरोध भी किया है। सहप्रवक्ता डॉ. अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध टीकों के सुव्यवस्थित वितरण और प्रबंधन के माध्यम से सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए मंत्रालय संबंधित निकायों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर ने महाकाली नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए नदी किनारे और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पूर्व सावधानी बरतने का आग्रह किया है। प्रशासन ने आज जारी एक सूचना में बताया कि भारत की धौली गंगा जलविद्युत परियोजना के बाद में कल सुबह 6 बजे से परसों शाम 5 बजे तक जमा हुई रेत, मिट्टी, गाद और मलबे की सफाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान महाकाली नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि इस उद्देश्य से बांध के द्वार खोले जाने संबंधी सूचना भारतीय पक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, इसलिए निर्धारित अवधि के दौरान आवश्यक सावधानियां अपनाने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले जिला प्रशासन कार्यालय दारचूला ने भी तटीय क्षेत्रों के नागरिकों को पूर्व सावधानी बरतने के लिए कल ही एक सूचना जारी कर सतर्क रहने का आग्रह किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में कल शाम को पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया, जिसके केंद्र याराकुई राज्य के सैन फेलिपे में था। इसके सिर्फ 39 सेकेंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भूकंप के बाद 30 आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए हैं। आशंका है कि भूकंप की वजह से मारे गए लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। राजधानी काराकास में भी भूकंप से कई इमारतें गिर गई है, पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घर तुरंत खाली करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के केंद्रीय सदस्य के लिए हुए निर्वाचन का मत परिणाम सार्वजनिक, 6 पदाधिकारियों के लिए आज रात होगी मतदान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक का किया गया प्रमाणीकरण और वेनेजुएला में आए 2 बड़े और शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 164 लोगों की मृत्यु तथा भवनों सहित अनेक संरचनाओं को पहुंची भारी क्षति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।